समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है पोषण अभियान से कुपोषण का निवारण। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाल शल्य चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार। नमस्ते, आपके श्रोतागण को भी नमस्ते।
और श्रोताओं, अब हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो का नंबर आपको हम बता देते हैं, 011 यानी दिल्ली का कोड नंबर है 2331444 और दूसरा नंबर है 2342105। इन पर फोन करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्ते।
डॉक्टर ऋचा, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि कुपोषण क्या होता है।
देखिए, कुपोषण को हम अगर आम जनता के लिए बताना चाहें तो हम इसको मैं सेग्रीगेट करके बताऊंगी। कुपोषण सिर्फ हमारे को कम खाना, अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से कम खाना ही नहीं होता। कभी अगर हम कुपोषण इसमें भी आता है कि अगर हम ज्यादा किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को खा रहे हैं जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड नहीं है। और तीसरा है कुपोषण का हिस्सा, जिसको हम कहते हैं कि आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो चीजें तो खा रहे हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिल रही है और कार्य करने की क्षमता के लिए, लेकिन आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे को दूसरी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता बढ़ाते हैं, उनकी कमी हो रही है। तो तीन तरह के कुपोषण देखे जाते हैं, जिसमें कि हमारे देश में इस वक्त हमारा देश तीनों तरह के कुपोषण से प्रभावित है और इससे लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसमें कि तीनों तरह के कुपोषण से लड़ने के बारे में शिक्षा भी दी जा रही है और उसके लिए कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे कि हम इस तरह की परेशानियों से बच सके।
डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत की जहां तक ये समस्या जो रही है कुपोषण की, ऐसा माना जाता रहा है कि बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है ये।
जी, आपने बहुत सही फरमाया कि हमारी सरकार इस बात पे बहुत गंभीर है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें कुपोषण की जो परेशानी है उसका निवारण किया जाए। और जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो वो सिर्फ एज स्पेसिफिक नहीं है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से हमें उस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक है तभी उसे वो बेहतर ग्रो कर पाएगा। उसके बाद जब वो स्तनपान कर रही होती है तो माँ का भी स्वास्थ्य देखना बहुत जरूरी है और जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो।
इस बीच में दरभंगा बिहार से हमारे साथ मोहन पासवान जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका सवाल पूछिए।
प्रणाम
जी। प्रणाम। सवाल
पासवान जी के इस जागरूक अभियान के लिए। सर
जी,
सर क्या बिहार में, भारत देश में बहुत से परिवार के बच्चे जवान बूढ़े पोषण के कमी के कारण कुपोषण का शिकार होकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं? सर किस प्रकार पोषण अभियान चलाकर कुपोषण को हराकर स्वच्छ भारत बनाया जा सकता है? सर
जी।
सर दूसरा है कि पोषण अभियान से कुपोषण का निवारण अभियान के लिए जागरूक कहाँ कहाँ करना होगा जिससे बीमारी मुक्त भारत बन सके सर, एवं पूर्ण विकसित स्वच्छ भारत बन सके सर?
जी मोहन जी, नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार 2018 से ही ये पोषण अभियान चला रही है। 8 मार्च 2018 में पोषण अभियान चालू हुआ था। ये बहुआयामी प्रोग्राम है सरकार का, जिसमें वो मात्र स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को एक साथ लेकर के चल रही है और उन दोनों के कुपोषण से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उनको एक साथ लेकर चल रही है। भारत सरकार का एम है, उनका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पहले 6 साल में उनपे उनके ग्रोथ में किसी भी तरह का रुकावट ना आए, और उसके बाद महिलाओं पे उनका विशेष ध्यान है, खास करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और स्तनपान के दौरान जो उनकी समस्याएं हैं उन सबको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और इस पे काम कर रही है।
दिल्ली से धर्मवीर हमारे अगले श्रोता हैं आज के। धर्मवीर
जी नमस्कार।
जी नमस्कार।
धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। देखा है कि हमने गांव में बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं कि पतले पतले होते हैं, डाइट उनको घर में जितनी सूखी रोटी जैसी भी उनके घर का खाना मिलता है खाते हैं, और अच्छे घरों में बच्चे हमने देखे मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, उनसे दो मंजिल चढ़ने में उनकी सांस फूल जाती है, गांव के बच्चे पेड़ पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो इसमें कितना फर्क आ जाता है, क्या बच्चे हमारे डाइट एक्सरसाइज नहीं करते या उनको कुछ एक्सरसाइज की जरूरत जरूरी होनी चाहिए, जो गांव के बच्चे खाते हैं सूखा और खेलते हैं और अच्छे फुर्तीले रहते हैं। ये
डॉक्टर रिचा
या धर्मवीर जी बहुत ही आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है। एक्चुअली गांव में हमारे जो बच्चे हैं वो फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो खुद पैदल चलते हैं या साइकिल चलाकर जाते हैं, जो कि उनके सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। शहरों में इन चीजों की लिमिटेशन भी है, हम सारा दोष बच्चों को नहीं दे सकते। प्लस जब आपके पास परचेजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है तो जो चीजें आपको इजीली मिल रही हैं आसपास मिल रही हैं, या जो शहरों के बच्चे हैं वो एडवर्टीजमेंट से ज्यादा प्रभावित होकर वो चीजें खरीदते हैं बिना सोचे समझे कि वो उनके सेहत के लिए सही है या नहीं। और उन पर ध्यान रखने वाला कितने लोग, मतलब जो लोग हैं वो उस बच्चे के उस एक्टिविटी पे कितना ध्यान रख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लस जब आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर गांव का एक बच्चा या ग्रुप ऑफ किड्स अगर वो एक हेल्दी पैटर्न में जी रहे हैं या हेल्दी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे अपने आप उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि शहरों में ये ट्रेंड बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो यही रीजन है कि जो हेल्थ पैटर्न है वो गांव और शहरों के बच्चों में डिफरेंट देखा जाता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है खाने के साथ साथ।
धर्मवीर जी मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि शहरों के बच्चे मोटे होते हैं और वो स्वस्थ दिखते हैं, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चा स्वस्थ दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो कुपोषण का शिकार ना हो। बहुत ज्यादा चर्बी का होना भी मालन्यूट्रिशन के ही दायरे में आता है, वो भी कुपोषित हो सकता है। तो जो पूर्ण आहार है उसको लेना बहुत जरूरी है। आपने कहा गांव के बच्चे सिर्फ सूखी रोटी खा लेते हैं, मगर जो गांव का भी बच्चा है अगर वो पूर्ण आहार ले रहा है, उसकी थाली में हर विभिन्न प्रकार के सब्जियां हैं, साग हैं, दाल हैं, तो वो कुपोषित नहीं रहेगा।
इस बीच जयपुर राजस्थान से प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद जी आपका प्रश्न क्या है?
मेरा निवेदन ये था कि आजकल जो गर्भवती महिला जो एम्प्लॉय भी है और मजबूरी कारण बाहर रह रही है, वो भी मजबूरी के कारण ऑनलाइन खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और या फिर अज्ञानता के कारण वो पूरा पोषण नहीं ले पाते, तो इससे कितना असर पड़ता है।
डॉक्टर रिचा
या प्रमोद जी आप जयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं तो फिर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी कि राजस्थान इसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है वहां पर, जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर स्पेशल काम किया जा रहा है। लैक्टेटिंग मदर, मतलब जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उनके ऊपर स्पेशल काम किया जा रहा है और इन सबकी ट्रैकिंग यहाँ दिल्ली में रहते हुए जो मिनिस्ट्री है उन सबको ट्रैक करती है कि बच्चों मतलब माता को और सुपोषण मतलब अच्छे से पोषण उनको मिले और उसके साथ साथ जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिले। आपका कहना है कि वो मजबूरी में बाहर से खाना खरीद के खाते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने मोदी जी ने बोला कि हम अपने खाने से 10% फैट का कमी करें और इसके अलावा जो हमारा जो भी फूड हम खाते हैं उस पर फूड लेबलिंग के ऊपर काफी काम हो रहा है। तो अगर हम अवेयरनेस के हिसाब से हम खुद नहीं चलेंगे तो गलतियां हमसे होंगी और उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आएगा। और यही इसी क्रम में ये एक प्रोग्राम भी है जो कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हम पोषण को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें बजाय कि हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी खाएं, यानी माइंडफुल ईटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
हिसार हरियाणा से हमारे आज के अगले श्रोता है राजेंद्र। राजेंद्र जी आपका प्रश्न क्या है?
निखिल जी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
जी
मैं जानना चाहता हूँ 0 से लेकर 10 साल तक उम्र बच्चे की वजन होना वो कितना होना चाहिए, और आजकल बच्चे पैकेट की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो ये बच्चों का कितना हानिकारक है और इसमें केमिकल भी लगा होता है, तो तो ये पेट के लिए और कितना बच्चे आगे चल के कितना खतरनाक है? नमस्कार जी।
डॉक्टर जी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने ये प्रश्न पूछा इनका।
जी ये सब बच्चे हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं हमारे परामर्श के लिए वो ये बात पूछते हैं कि बच्चे का वजन सही है कि नहीं। तो उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि एक साल का बच्चा 10 किलो का होना चाहिए। अगर एक साल का बच्चा 10 किलो से कम है तो फिर वो कुपोषण का शिकार है। इसी तरह एक साल से 10 साल के बच्चों में कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि प्रति वर्ष वो 2 किलो उसका बढ़ जाना चाहिए वजन। तो 8 साल का बच्चा है तो पहले वर्ष में 10 किलो, उसके बाद के 7 सालों में 7 × 14 यानी वो 24 किलो का होना चाहिए। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है कि अगर बच्चा 8 साल का बच्चा अगर 24 किलो का है तो वो स्वस्थ है, अगर उससे कम है तो वो कुपोषित है।
जी और जाजपुर ओडिशा से हमारे आज के अगले श्रोता है पद्मलोचन मोहंती जी। पद्मलोचन जी स्वागत है कार्यक्रम में, आपका सवाल क्या है?
नमस्ते, मैं दोनों विशेषज्ञों में नमस्ते। और मेरा एक क्वेश्चन था जी, हमारा जो कुपोषण के बारे में जो आंकड़ा होता है हमारा इंडिया में कितना होता है और हमारा ओडिशा में कितना है? और जो
आपका रेडियो बंद कर लीजिए
जी
जी, आप प्रश्न
और उनको मुकाबला करने का कोई एनजीओ लोगों को क्या हेल्प मिलता है
जी? पूछना चाह रहे थे जो इस तरह की समस्याएं हैं उसमें एनजीओ से किस तरह की सहायता ली जाती है या अन्य जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किस तरह से होते हैं?
एनजीओ पे बात करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग एनजीओ का काम चल रहा है। हमारा जो फोकस रहेगा बताने के लिए कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में आपको पता है कि हमारा पोषण अभियान, अभी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया है कि पोषण अभियान को कई दूसरे आयाम से जोड़ा गया है, यानी हर मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया जिससे कि पोषण को हम हेल्दी मदर हेल्दी चाइल्ड को हम बढ़ावा दे सकें और पोषण को हम बढ़ावा दे सकें। अब इसमें एक ही आयाम नहीं है, कई आयाम है जिसमें पोषण के साथ साथ स्वच्छता, पोषण के साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताएंगे, इन्होंने अभी हमसे डिस्कशन में बता रहे थे कि पेड़ लगाना कैसे एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने से हम कैसे पोषण को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप ऐड करना चाहेंगे?
जी, मैं एकदम ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हमारी भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब स्कूल हेल्थ से इसको जोड़ा गया है कि पोषण का, आपको पता है मिड डे मील दिए जा रहे हैं वो भी पोषण अभियान का ही एक हिस्सा है। इसी तरह आंगनवाड़ी में जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं आंगनवाड़ी में जाते हैं उनको भी अलग से न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है वहां पे, वो भी पोषण अभियान का ही हिस्सा है।
डॉक्टर राजे एक चीज इसमें मैं पूछना चाहूंगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप बहुत दुबले पतले होते हैं तो बच्चे भी दुबले पतले होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये लोग कुपोषण का शिकार है, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है या दुबला होना जैसे माँ बाप, ये तो हेरिडिटी की बात हो गई, तो इसमें लोगों को जो संदेह रहता है या जो उनकी उनको अज्ञानता है उसको कैसे दूर करेंगे?
नहीं, जेनेटिक एक फैक्टर जरूर होता है मगर जो हमारे लिमिट्स हैं जिसको हम बोलते हैं 3rd percentile, तो जो हम ग्रोथ चार्ट देखेंगे चाहे वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ग्रोथ चार्ट बनाया हुआ है कि बर्थ के बाद वजन और लंबाई किस हिसाब से बढ़ती है, तो किसी भी सीमा किसी भी समय पे वो 3rd percentile से कम नहीं होना चाहिए
जी,
तो उसका एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। तो अगर माँ बाप पतले भी हैं तो वो उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, वो तभी less than 3% जाएंगे जब वो बच्चा कुपोषित होगा।
और जो बच्चे जैसे नवजात बच्चे होते हैं तो क्या उनमें पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा आगे कुपोषित होगा या बिल्कुल सही हेल्थ का होगा?
इसका पहले से तो नहीं पता लगा सकता है मगर अगर स्वस्थ माँ है तो स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चा होता है, और अगर पैदा होने के बाद उसे स्तनपान अच्छे से दिया गया है, उसके बाद 6 महीने के बाद उसका पूरा आहार उसको अच्छे से दिया गया है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो पोषित रहेगा।
यानी स्तनपान कराना माताओं के लिए अपने बच्चों को बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है
जी। पटना बिहार से शिवम हमारे साथ हैं। शिवम जी आपका प्रश्न क्या है, पूछिए।
मेरा पहला प्रश्न है कि कुपोषण का लक्षण क्या है और उसका दायित्व क्या है, और दूसरा प्रश्न है मेरा कि कुपोषण ग्रामीण इलाका में क्यों होता है, और तीसरा प्रश्न है मेरा
जी, क्या है तीसरा प्रश्न आपका जी डॉक्टर ऋचा?
हाँ, तो इन्होंने 2 प्रश्न पूछा कि कुपोषण का लक्षण हम कैसे पता लगाएंगे कि कुपोषण क्या
उसका
है,
क्या उपाय हो सकता है, तो ग्रामीण इलाकों में कितना ज्यादा होता है क्या
कुपोषण? ग्रामीण में भी है शहरी में भी है, ये उनको समझने की जरूरत है क्योंकि कुपोषण हम सिर्फ कम वजन को नहीं कहते, ज्यादा वजन होना अपने एक मानक से वो भी कुपोषण है, और स्वस्थ दिखने के बावजूद भी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो भी कुपोषण है। दूसरी चीज इनका कहना है कि हम कैसे पता लगाएंगे, तो बच्चों में तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी अपने एज से उनकी हाइट कम है, अपने एज से उनका वजन कम है, अपने हाइट के अगेंस्ट में उनका वजन कम है, तो उनको कुपोषित के दायरे में रखा जाता है और उसका प्रॉपर असेसमेंट होता है। तो हम एक क्राइटेरिया लेकर हम उसको कुपोषण के दायरे में नहीं डाल सकते, उसके लिए आप प्रॉपर समझना चाहिए। और एक छोटी सी बात को लेकर इसको कुपोषित है या नहीं कुपोषित है नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात है तो पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए बच्चों को, बच्चों के लिए बराबर। दूसरा, इनसे बचे कैसे, तो बचने के लिए हर एज ग्रुप के लिए एक मानक पैटर्न है कि उनको कैसे संतुलित आहार अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों का आहार 0 से 6 में माँ का दूध सबसे पूरक आहार है, तो वो जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है उसमें बदलाव आना जरूरी है। पूरक आहार आपको करने के लिए माँ के दूध के अलावा आपको अन्य भोजन पदार्थ भी शामिल करना पड़ेगा। किस फॉर्म में आप शामिल कर रहे हैं, जो शामिल कर रहे हैं वो क्लीन है या नहीं, जो बच्चा खा रहा है या जो बड़े लोग खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम इससे कुपोषण से बचाव कर सकते हैं।
जी डॉक्टर अजय, एनीमिया ये अभी बढ़ने ज्यादा लगा है या इसके बारे में जागरूकता ज्यादा बढ़ी है इसलिए लोगों को ज्यादा पता चल रहा है? तो जो सरकार ने मतलब एक अभियान शुरू किया एनीमिया मुक्त भारत 2018 में से शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य था कि एनीमिया की कमी की गति को सालाना 1 से 3% अंकों तक कम करना था, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
जी मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनीमिया जो है वो खून में हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं
जी।
तो अगर एक खास मानक से कम है तो उसको अनीमिया के दायरे में रखा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे हुए हैं लास्ट ईयर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें पाया गया है कि करीब करीब 30% से ज्यादा बच्चे जो हमारे हैं उनमें अनीमिया के शिकार हैं। तो सरकार ने उसको एक युद्ध स्तर पर रखा है, उसको पोषण अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि हमें प्रतिवर्ष 3% की गिरावट देख लेनी है तक अनीमिया के दरों में। तो ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है पोषण अभियान का। और जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है उसमें भी आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बच्चों का भी होता है और मदर्स को भी देते हैं।
जी डॉक्टर ऋचा, कुपोषण की जहां तक बात है, ये मोस्टली लोग ये मानते हैं कि बच्चों का ये ज्यादा प्रॉब्लम, तो क्या ये सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम है या किसी भी एज में हो सकता है, और किन चीजों से हो सकता है और इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए?
देखिए कुपोषण तो किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में कुपोषण को इसलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि उनको ग्रो करना है और वो हमारे वर्कफोर्स हैं आने वाले समय के लिए। तो अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो एडल्टहुड में आकर भी स्वस्थ नहीं होगा, एडोलेसेंस में स्वस्थ नहीं होगा। लेकिन कुपोषण हमारे सिर्फ इसी एज ग्रुप में लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा वो हमारे ओल्डर एज में यानी जो वृद्ध जो हमारा कम्युनिटी है उसमें भी कुपोषण के लक्षण काफी देखे जाते हैं। अगर पोषण अच्छे से नहीं हुआ यानी खान पान अच्छा नहीं रखा गया तो जो जन्म देने वाली माँ जो है प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है उनमें भी कुपोषण के लक्षण देखे जाते हैं। एडोलेसेंट एज में फीमेल में स्पेशली एनीमिक काफी देखी जाती हैं लड़कियां। तो कुपोषण किसी एज से एसोसिएटेड नहीं है, मगर जिस दौर में हम उनका सुधार करेंगे और एक पैटर्न सेट करेंगे वो लॉन्ग रन में उनके साथ काम करेगा, इसलिए उसको अर्ली एज में उसको टारगेट करना, इनिशियल 1000 डेज में उसको टारगेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल के बच्चों तक की उम्र के लिए हम टारगेट करते हैं और उसके बाद 0 to 6 years के लिए जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है ज्यादातर।
एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था लेकिन पहले हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं उनसे बात करते हैं। बागपत यूपी से हैं शेषपाल जी। शेषपाल जी आपका सवाल क्या है?
जैसे गर्भवती महिला होती है, सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, जो गर्भवती महिला होती है और उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं बच्चा अंदर जो बच्चा है वो कुपोषण में है, तो उसको इनका कमीशन होता है तो उसको करवाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं, क्या उसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो अंदर बच्चा है?
जी डॉक्टर जी
देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सीटी स्कैन नहीं कराते क्योंकि उसमें एक्सरे इन्वॉल्व होता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड से बच्चे पे हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। और जो अल्ट्रासाउंड है वो उसका एक जांच करने का तरीका है जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, और उससे बच्चे के स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी और अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार झा है ये दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
नमस्कार सब सभी को। सर, मेरा ये कुपोषण के ऊपर एक सुझाव है सरकार को भी और आप सबके द्वारा माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से शुरुआत हो जाती है, जो गर्भवती महिला होती है उससे पहले ही डेटा हमारे पास आ जाता है कि फलना 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 लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है सर। तो उसके हिसाब से ही उनको ना एक चार्ट शीट दे दिया जाए, सरकार द्वारा बनाया जाए कि कितने मात्रा में क्या सेब खाने हैं, अमरूद खाने हैं, पपीता खाने हैं या ओट्स खाने हैं, इस तरह का कुछ डाइटेशन बता दिया जाए ना सर। क्योंकि आम जो मध्यम वर्ग के निम्न वर्ग के परिवार है ना, उनको सर इतना डाइट चार्ट के बारे में पता नहीं, प्रोटीन किसमें है, कार्बोहाइड्रेट किसमें है, विटामिन।
सवाल क्या पूछना चाहते हैं?
सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि सरकार को एक चार्ट लिस्ट बताना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उनको खान पान का ध्यान रखना है और बच्चों को उसी के साथ खिलाना है
जी।
जो डाइट चार्ट होता है ना सर, तो एक आम आदमी को नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार उसको केंद्रित करे और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों तालमेल बैठे।
डॉक्टर ऋचा आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
हाँ, तो इसके ऊपर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और हर जगह एक बेसिक डाइट प्लान ऑलरेडी अवेलेबल है। इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे डाइटिशियन होती हैं, तो जो गर्भवती महिला है, देखिए कुछ ओनस तो पेशेंट को या कैंडिडेट को खुद भी लेना होता है। जब ये इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इनका जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी आम जनता को पता ही नहीं है तो वो खाएंगे कैसे कि किस चीज में क्या है। तो इनके प्रोग्राम को, सुझाव को सभी लोग सुन ही रहे होंगे, वो जहां तक जितना आगे और बढ़ा सकते हैं, जो भी हम जितना भी अभी हो रहा है वो सफिशियंट तो नहीं है पर किसी दर तक तो पहुंचे हैं, तो यहां से आगे और भी इस चीज को बढ़ाया जा सकता है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं इस पॉइंट को हमारी अपनी सोसाइटी में जरूर रखूंगी, जहां तक हम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके वो पहुंचाएं इस सुविधा को।
हमारे श्रोतागण ने बहुत अच्छा सवाल किया और हम इनको बताना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है उसमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान होता है, हमारे सारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी दिया गया होता है और उनको ये निर्देश दिया गया होता है कि वो घर पे जाकर के जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको समझाएं कि उन्हें खाना कैसा है और क्या क्या खाना है,
यानी कि जो जागरूकता लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो जागरूकता फैलाने में भी थोड़ा सा समय तो लगेगा।
इंडिविजुअलाइज तो सर देखिए, इंडिविजुअलाइज तो हर इंसान को खुद भी थोड़ा सा पैटर्न जानने के लिए खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा, पर बेसिक जैसे डॉक्टर साहब ने बोला बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है
जी। डॉक्टर ऋचा आप एक आहार विशेषज्ञ हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि वो सुबह से लेकर के रात तक अपना किस तरह का डाइट प्लान रखें कि जो एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ के लिए जरूरी होता है।
तो जैसे कि अभी हम एक एवरेज लेते हैं, मैं इंडिविजुअलाइज प्लान तो नहीं बता रही अभी, पर एक एवरेज लेते हैं कि हमारे को अपने दिन की शुरुआत करनी है तो हमें कैसे करना चाहिए। तो दिन की शुरुआत करते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे दिन अपना काम भी करना है, जिसमें कि हमारी डाइट कम्प्लीट होनी चाहिए। कम्प्लीट होने का मतलब होता है कि हमारे डाइट में हाई फाइबर जो अनाज होते हैं, यानी साबुत अनाज जिन चीजों में होता है, ओट्स कह लें या तो हम साबुत अपना घर का साधारण खाना भी कह लें, रोटी है तो चोकर के साथ है, ऐसी कोई चीज हमारे डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी चीजें जिनमें कि प्रोटीन होता है, जैसे कि चाहे वो दूध और दूध से बनने वाली चीजें हो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग या नॉनवेज का कुछ ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो बातें हम जनरली भूल जाते हैं वो है फाइबर। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हम जिस भी तरह का रेसिपी ले रहे हैं उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करें। सेकेंड हमारा आता है जो मेन मील होता है हमारा, वो मेन मील आता है सेकेंड नंबर पे लंच का। तो लंच एक कंप्लीट मील होनी चाहिए और अगर हम भारत का थाली पैटर्न अगर उसको फॉलो करते हैं, चाहे हम जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी स्टेट के पैटर्न को फॉलो करते हो, वो हमारे लिए कंप्लीट मील का एक पिक्चर देता है, जिसमें कि सीरियल है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी कर्ड होगा या कुछ ऐसी चीज होंगी जो प्रोबायोटिक की तरह एक्ट करती हैं, सैलड्स होता है हमारी डाइट का हिस्सा। एंड थर्ड जो मेजर मील आता है हमारा वो है डिनर। डिनर थोड़ा सा लाइटर होना चाहिए और जितना अर्ली हम उसको कर सके, बट कंप्लीट मील इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को अवॉइड करना कंप्लीटली या किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को अवॉइड करना कंप्लीटली विदाउट बीइंग एलर्जिक इज नॉट एडवाइजेबल, जो कि आजकल ट्रेंड लोग फैट फूड में करते हैं। और इन बिटवीन मील हमारे को लिक्विड्स, हेल्दी लिक्विड्स जो होते हैं, सूप है, छाछ है, ऐसी चीजें, सत्तू है, हाँ, ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने ब्रॉड मैंने बताया है, पर इंडिविजुअलाइज्ड ये डिफरेंट हो सकता है।
और कटक ओडिशा से कल्प तरुदास जी हमारे साथ फोन लाइन पर है जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
नमस्कार। नमस्कार जी।
नमस्कार।
अभी जैसे ओबीसी में बढ़ रहा है, बॉयज और गर्ल्स को एक्चुअली कितने किस टाइप की लेना चाहिए डाइट, ताकि इनका हेल्थ सदा सदा बनी रहे। अच्छा,
हाँ, तो जो वयस्क में ओबेसिटी का है, इसके लिए आपको अभी आपने अगर सुना होगा गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला है कि अपने खान पान में हम 10% अगर फैट का, चिकनाई का कमी करते हैं, प्लस हम जो फूड आइटम हम खा रहे हैं यानी बाहर से जो परचेज करके खा रहे हैं, उसको हमें फूड लेबल पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, सो दैट हम उसमें आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा फूड आइटम हमारे लिए हेल्दी है या नहीं। फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, स्मॉल पोर्शन साइज रहना चाहिए, अर्ली डिनर, और अभी जैसे इस क्वेश्चन के पहले मैंने जो बातें कही थी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से, एंड इन सब के अलावा फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है।
और राम शंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम सवाल पूछेंगे। राम शंकर जी, आपका सवाल क्या है? राम शंकर जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए।
जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि पोषण अभियान से कुपोषण के नियंत्रण कैसे हो, जबकि वातावरण खान पान सभी कुपोषित है।
जी डॉक्टर
जी, जी आपने बहुत सही कहा कि वातावरण भी कुपोषित हो गया है हमारा, और ये सब पोषण अभियान के हमारे हिस्सा हैं। भारत सरकार ने हमें इसे बहुआयामी बना दिया है। इसका मतलब है कि जो हमारा पोषण अभियान है उसमें स्वच्छ जो घर से जल परियोजना है उसे भी जोड़ा गया है, स्वच्छता अभियान को भी जोड़ा गया है, स्कूल हेल्थ को भी जोड़ा गया है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को भी जोड़ा गया है। तो ये पोषण अभियान जो अभी भारत सरकार चला रही है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हो गया है, और इन सभी आयामों को देखते हुए इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं इसके, उसको बनाए गए हैं।
शोलापुर महाराष्ट्र से अगले श्रोता हैं प्रकाश राउत जी। प्रकाश जी, आपको क्या पूछना है हमारे विशेषज्ञ से?
मेरा ये सवाल है, जो नेचुरल अन्न होता है और केमिकल युक्त अन्न होता है, वो सिटी में नेचुरल अन्न कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिल जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा?
जी डॉक्टर रिचा,
मुझे नेचुरल अन्न का मतलब होता है कि जो चीज हमें साबुत रूप में मिल रही है, यानी कि धान है या चोकर युक्त आटा है, या तो फिर जो हम मिलेट्स की बात करते हैं आजकल, जो जिसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर होता है, तो ये सब तो जिस रूप में ये हमारे खेत से हमारे पास आए, ये सब नेचुरल है। केमिकल अगर इनसे हमने कुछ बना लिया और इनको प्रिजर्व करने के लिए हमने कुछ केमिकल्स ऐड किया, तो वो प्रिजर्व्ड फूड है, तभी ये कहा जाता है कि हमें घर का बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए, एंड होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, होल वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, इनका अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। तो इसी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिंपल भाषा में।
कहीं ना कहीं मैं शायद जहां तक समझ पाए वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि प्रोसेस्ड फूड किस तरह का फूड है, क्या उसको लेना सही है या उससे बचना चाहिए?
नहीं, प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, और जितना हम उसको अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, और गट माइक्रोबायोटा के लिए भी अच्छे नहीं है। अगर हमारे गट ही अच्छा नहीं होगा, तो चाहे हम जितना भी पोषण की चीजें खाएं, वो हमारे शरीर को फायदा पूर्णता नहीं पहुंचा पाएंगे।
डॉक्टर अजय, जहां तक पोषण की बात है, तो पोषण केवल आहार तक सीमित नहीं है, इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, जल है, स्वच्छता है, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी हैं। तो किस तरह की चीजें जरूरी है कि पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जाए?
देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जन जागरण अभियान के तहत जागरूकता फैलाना। पोषण को जब तक हम अपने समाज के दूर समाज तक ले नहीं जाएंगे, तब तक इस पे एक बहुत ही ठोस रूप से करना बहुत मुश्किल होगा।
तो सरकार जो अभियान चला रही है, उन अभियान के साथ में इनको जोड़ते हुए सारी चीजों को आगे बढ़ा जा सकता है?
जी जी, जैसे हमारे आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, ICDS प्रोग्राम,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा ही महत्वपूर्ण,
तो सारे प्रोग्राम्स हमारे ब्लॉक लेवल पे भी चलते हैं, गांव-गांव के लेवल पे हमारे ICDS प्रोग्राम, आंगनवाड़ी प्रोग्राम चलता है। तो जो जनता है अगर उससे जुड़ती है, तो हमारे सरकार उसमें बहुत हेल्प कर रही है, उसमें सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुपोषण, मतलब कुपोषण को जल्दी से कैसे पहचान सकें, वो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को सिखाया जाता है, तो उसका पहचान जल्दी हो जाएगा और उनका इलाज भी जल्दी हो जाएगा।
जी, अब घड़ी की सुइयां फिलहाल तो ये इशारा कर रही हैं कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाने का समय हमारे पास नहीं बचा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम फिलहाल तो अपने निर्धारित समय की तरफ समाप्ति की ओर है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और आज की चर्चा में भाग लेने और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाल शल्य चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल, आप दोनों का भी धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वायदे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी की गोल्ड चैनल पर, फिर मिलेंगे। नमस्कार।